ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं दंशजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तत्कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हिंदी सब समझते ट्रांसलेट करो आप सीरियस सर्वानी हिंदी समझता टीवी देख के सबको हिंदी मालूम है अरे कृष्ण तो आज सहदेव सुतार प्रभु उनकी धर्म पत्नी और किरण तीनों ने निश्चय करके श्री गौर निताय को अपने घर में आमंत्रित किया गौर निताय कौन है ये बाद में चर्चा करेंगे पर ये आमंत्रित जो किया है ऑफकोर्स ये जो विग्रह जो आपने देखा वो कृष्ण और बलराम ब्रजेंद्र नंदन जयी शची सुत होइलो सी बलराम होइलो निताय थोड़ा कम करो शायद उसका दिशा मोड़ना पड़ेगा तो भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता कि मैं सारे सृष्टि का स्रोत हूं सब कुछ जो है आध्यात्मिक और भौतिक संसार वो मुझसे आता है और ये धारणा के साथ जो मेरी भक्ति करता है वो बड़ा बुद्धिमान है और वो मेरे धाम को प्राप्त करता है तो वही श्री कृष्ण जो 5000 साल पहले द्वापर के अंत में श्री वृंदावन धाम में अवतरित हुए उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ वही दो भाई फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में अवतरित हुए और युग धर्म का प्रचार किया। धर्म यानी हमारा मूल स्वरूप, उससे जब आदमी दूर चला जाता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, हम जब अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपना स्वरूप को भूल जाते हैं, तो हम सुखी नहीं रहते, मन की शांति नहीं रहती, आनंद नहीं रहता। भले सब कुछ है पर फिर भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है मन में। जैसे मछली का स्वरूप है पानी में रहना, पर मछली को पानी से हटा दिया जाए तो जितना भी उसको एक अच्छा स्थिति में रखो पर वो तृप्त नहीं है। तो वो तृप्ति तब आएगी जब मछली को वापस पानी में अपने मूल स्थिति में डाल दिया जाए। तो धर्म यानी अपना मूल स्थिति को प्राप्त करना। और जीव का मूल स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान का दासत्व करना। भगवान का दास दासत्व को छोड़कर जब हम इस भौतिक संसार में प्रभु बनने के लिए आते हैं और इस भौतिक संसार की चीजों का दासत्व करते हैं, अपनी इंद्रियों का दासत्व, अपने परिवार का दासत्व, अपने समाज का दासत्व, देश का दासत्व, मानवता का दासत्व, अब जितना भी जिसका भी दासत्व कर लो, पर जैसे मछली पानी से बाहर तृप्त नहीं होगी, ये सबकी दासत्व करने के बाद भी हम तृप्त नहीं हो सकते। ये धर्म संस्थापनार्थ है। और ये सिखाने के लिए संभवामी युगे युगे, वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर युग में मैं आता हूं और युग धर्म प्रवर्तन करता हूं। तो इस कलयुग में वही श्री कृष्ण और बलराम जो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, शास्त्रों के द्वारा हम समझते हैं। तो इनको हमने अपने घर में आमंत्रण किया है, आमंत्रित किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जनस्य मोहोयम अहम ममेति। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर का नाश होता है, जन्म होता है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु, बीमारी मृत्यु आ जाती है। पर जब जीव इस शरीर को प्राप्त करता है तो पूर्ण रूप से अपने आप को ये शरीर समझ बैठता है। मैं ये शरीर हूं और शरीर से जुड़ा हुआ चीज, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा बंगला और ये मेरा समाज, इससे इतनी तीव्र आसक्ति हो जाती है कि व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं और मुझे जाना कहां है, और उसकी तैयारी नहीं करता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर परीक्षा होती है, परीक्षा में अगर पास नहीं हुआ तो फिर से वही क्लास में रहना पड़ता है, फेल हो गया। इसी तरह से मनुष्य जीवन जो है एक पाठशाला है जहां हमको सीखना है और परीक्षा में पास होना है। और परीक्षा कब आती है? मृत्यु के समय। यम्यम वापि स्मरण भावम चिजित्यन्ते कलेवरम तम तमे वैदिकौन्ते सदा तद्भाव। और जैसी आपने तैयारी की है वैसा आप परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तत्र संशय। मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो हम परीक्षा में पास हो गए और भगवत धाम को प्रमोशन हो जाएगा, नहीं फिर से वही क्लास, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी हमको तो मनुष्य योनि मिला है, अच्छा है। प्रभुपाद जी एक बार गए थे अमेरिका में, वहां एक यूनिवर्सिटी में प्रवचन कर रहे थे और बोले कि देखो ये अगर इस मनुष्य योनि का यूज उपयोग नहीं करोगे तो पता नहीं आप कुत्ते बन जाओगे अगले जन्म में। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला तो कोई क्या तकलीफ है, मेरे को कुत्ते बनने में कोई समस्या नहीं है। अब क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए, आप कोई कीड़े बन जाओगे, मकोड़े बन जाओगे, क्या खाता है सुअर बन गया, क्या खाएगा कुत्ता, क्या खाता है, घृणात्मक रूप से हम देखते हैं कभी कभी क्या चीज वो लोग खाते हैं। पर इस लड़के ने कहा कि मुझे कुत्ते बनने में कोई समस्या नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है मेरा आशीर्वाद है। तो क्या करेंगे, तो लोगों को लगता है कि ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है हमारा सब परिवार, अच्छा अच्छा चल रहा है, पैसा हम कमा रहे, घर भर सब हो गया ना, अभी खुश है। पर हमें से कितने लोग मृत्यु चाहते हैं, कितने लोग मरना चाहते, कितने लोग उत्साहपूर्वक देख रहे कब मृत्यु आएगी, कितने लोग चाहते हैं कि बीमारी आए, कितने लोग चाहते हैं कि बुढ़ापा हो जाए, ये समस्या है। और कोई व्यक्ति चाहता नहीं है, क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा का बुढ़ापा नहीं, आत्मा का बीमारी नहीं। पर दुर्भाग्यवश करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमको एक शरीर मिल मिलके जनस्य मोहो यम अहम ममिति, इस मोह में हम पड़ गए। इससे निकालने के लिए जो तरीका है वो भगवान सिखाने के लिए आते हैं, और भगवान को अपने घर में आमंत्रित करने का मतलब यही है कि अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने जितने सारे समाज के सदस्य हैं सबको साफ साफ जोर से ढिंडोरा बजाकर जोर से कहना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरे परिवार के जितने सारे सदस्य हैं ये सब भगवान के दास हैं और इनकी जिम्मेदारी करना मेरा कर्तव्य है, और ये जो घर है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, मैं इसका केयर टेकर हूं, मालिक नहीं हूं मैं, मालिक वो है, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी घर रहेगा, हम नहीं रहेंगे, मालिक वो है पर हम इसके केयर टेकर क्या कहते हैं, देखभाल करने वाला मैं हूं, ये इसका मतलब है। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक ये हमारा पूजा जो है, भगवान को थोड़ा सुबह अगरबत्ती दिखा दिया, एक फूल चढ़ा दिया और बस अभी मैं प्रभु हूं, अभी तुम साइड में बैठो मैं संभाल लूंगा सब कुछ, ये भावना ठीक नहीं। 24 घंटे उनको मतलब समझ में आना चाहिए कि भगवान हमारे प्रभु हैं, इस घर के प्रभु भगवान हैं और हम सब इनके दास हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो भी है ये सब इनके दास हैं, और इनकी दासत्व करने के लिए इनको शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, मन ठीक ठाक होना चाहिए, बुद्धि अच्छा विकसित होना चाहिए और आत्मा भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो ये सबसे बुद्धिमान आदमी का लक्षण है, जो बुद्धिमान आदमी है वो भगवान को अपने घर में आमंत्रित करता है। नहीं, एक भक्त बता रहे थे घर का नाम हम लोग लिखते हैं भवन, भवन भवन का मतलब क्या, भ यानी भगवान, और भगवान कहां निवास करते हैं, वृंदावन, वन में निवास करते हो वृंदावन, पर वो वन वन नहीं, वैकुंठ धाम है, जहां भगवान निवास करते हैं वो वृंदावन है। तो भवन मतलब भगवान का निवास करने वाला वृंदावन, और अगर भगवान को हटा दीजिए, भ हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन में कौन निवास करता है, प्राणी लोग, पशु, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना वो भी करते, बगल में वहां बैठा हुआ वो भी आसन पे बैठा हुआ कुत्ता उधर, उसको लगता है कि मेरा घर है, उस कुत्ते को अभी लग रहा है कि मेरा घर है, पर एक आदमी आएगा डंडा मारेगा निकल जाएगा बाहर, बस इस तरीके से यमराज आएंगे, हमको एक डंडा मारेंगे, हम निकल गए, हम लग रहा है हमारा घर है, हम लोग कुत्ते जैसा बैठ के भाव 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 मैं हूं ये हूं मैं हूं मैं मालिक हूं मैं हूं करते रहते हैं, और बाद में यमराज आएगा, हे हट गया बाहर, धूम अंदर दबा के भागते बाहर। तो ये मूर्खता से बाहर निकालना ज्ञान शास्त्र देता है, भगवान देते हैं, सदगुरु देते हैं, कि याद रखो कि ये सब तुम्हें भगवान ने दिया है, और जैसे भगवान चाहते हैं वैसा इन चीजों का देखभाल करो। निमित्त मात्र भव सव्य साची, सच्ची देखभाल करने वाला तो भगवान है। भगवान चाहे तो सबकी रक्षा कर सकते हैं, भगवान नहीं चाहे तो आपके पास जितना भी पैसा हो, सबसे अच्छा डॉक्टर आपके पास हो, सबसे अच्छा लॉयर आपके पास हो, फिर भी जीवन में समस्या आएगी, आपके करोड़ों रुपए आपको नहीं बचा सकते मृत्यु के समय। देखभाल करने वाले भगवान है, संरक्षण करने वाले भगवान। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु मारने की कोशिश कर रहा था, पर प्रहलाद महाराज को विश्वास था मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो देखभाल करने वाले भगवान है, संरक्षण करने वाले भगवान है, असली मालिक भगवान है, उनकी शरण जाना, उनकी शरण जाना। और इसका मतलब यही है, भगवान को आमंत्रित करने का मतलब यही है। दुर्भाग्यवश आजकल भारत में मैं देखता हूं, जहां भी, भले दक्षिण भारत जाओ, उत्तर भारत जाओ, कहीं भी पश्चिम पूर्व कहां भी जाओ, दो प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग जो दुर्भाग्यवश भगवान को न जानने के कारण नास्तिक हो गए पूरा, और उनको लगता है कि जीवन का उद्देश्य है खूब मौज मस्ती करना, पैसा कमाना, और दुर्भाग्य न वो खुशी है, न वो सुखी है, न दूसरे लोग। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उनके घर में पूर्वजों ने कुछ पूजा वूजा रखा है, वो पूजा कर रहे बस, पर उनको ये नहीं मालूम कि वो कौन है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसा करना है, ये नहीं मालूम, ये भावना नहीं है। भगवान को भी अपना कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर बना के रखे, मैं तुमको 5 मिनट पूजा करूंगा, इसके बाद मेरा धन देना, बल देना, बुद्धि देना, ये देना, ये देना, नहीं दिया तो फिर आपको हटा के दूसरे को लाऊंगा। तो ये भावना साधारण तरीके से हम देखते हैं। दो ही प्रकार के लोग, एक नास्तिक लोग हैं जिनको भगवान के विश्वास उड़ गया, दुर्भाग्यवश क्योंकि किसी ने उनको सिखाया नहीं है भगवान कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, ये कोई सिखाया नहीं किसी लोगों को, क्योंकि उनको मालूम नहीं, सदगुरु का आश्रय नहीं लिया। और दूसरे लोग हैं कि तथाकथित पूजा हो रहा है घर में, पर मालूम नहीं कि भगवान कौन है, क्यों उनको पूजा करना है, कैसे करना है, किस भावना से करना है। तो ये तरीका सिखाने के लिए भगवान कहते गीता में, पद्म पत्रमिवाम भसा, कमल के पत्ते जैसा रहना है। मैं अभी 2 दिन पहले इधर गए थे हम लोग पंपा सरोवर, इधर होसपेट के पास जो किष्किंधा क्षेत्र है जहां प्रभु रामचंद्र आए थे और शबरी से मिले थे, तो शबरी का गुफा है और गुफे के सामने बहुत सुंदर सरोवर है, पंपा सरोवर तालाब है, और तालाब में पूरे के पूरे कमल के फूल और कमल के पत्ते, और आप देखेंगे कमल के पत्ते ऐसा है, कमल के पत्ते में आप अगर एक बूंद पानी डालो तो गोला बन जाएगा और फिसल के चला जाएगा, चिपकेगा नहीं वो कमल के पत्ते से। इसी तरह से भगवान कहते हैं कैसे हम संसार में रहना है, जिम्मेदारी निभाना है, पर संसार के नहीं हो जाना, संसार में रहकर संसार के नहीं होना, ये कला है, ये एक तरीका है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो पेशेंट से मिलने जाता है, मरीजों को जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, पर वो खुद बीमार नहीं होता कभी भी, क्योंकि उसको मालूम है बीमारी कैसा फैलता है, और वो जाने से पहले एकदम ग्लव्स पहनेगा, सब देखेगा, परीक्षा करेगा, फिर तुरंत आने के बाद स्नान वान करेगा और ग्लव्स निकाल देगा, ताकि हॉस्पिटल में जाना मतलब सब रोगी है वहां, सब रोगी है, और रोगियों के संग में रहोगे तो कोई खांस देगा, कोई स्पर्श कर देगा तो हमको भी रोग लग जाएगा। पर अगर डॉक्टर बोलेगा मैं इसीलिए रोग नहीं चाहिए इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाऊंगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? फिर वो डॉक्टर कैसा बना हो? कोई डॉक्टर कहेगा कि मैं किसी रोगी को नहीं देखूंगा क्योंकि पास जाऊंगा तो बीमारी हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर क्यों बना तुम? तो डॉक्टरगिरी नहीं कर सकता है जब तक वो रोगियों के पास नहीं जाएगा, पर रोगियों के पास गया तो रोग लगने की संभावना ज्यादा है। इसी तरह से हमको इस भौतिक संसार में रहना है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से भरा हुआ है, सारे एक व्यक्ति ऐसा ही है। और संसार को छोड़ के हम हिमालय तो नहीं जा सकते, तो संसार में रहना है। पर रहे तो असर पड़ जाता है हमको भी, अरे इतना कमा रहा है और मैं कुछ नहीं कमा रहा, उसके पास चार गाड़ी है मेरे पास दो ही है, अरे तुम दो ही लोग हो तुमको चार क्यों चाहिए? बोले नहीं नहीं, अगर चार गाड़ी नहीं तो फिर समाज में हमारा प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा? तो हमारी जरूरतें क्या है और हमारे इच्छा क्या है? इच्छा तो बहुत है, मरते दम तक इच्छा बहुत सारे रहते, पर जरूरतें क्या है वो देखना जरूरी है। ये वैदिक संस्कृति है, सादा जीवन उच्च विचार, पर वो नहीं हो पाता है क्योंकि ऐसा संग है, जैसा संग वैसा रंग। तो भगवान सिखाते हैं कि किस प्रकार संसार में रहना है, कमल के पत्ते जैसा, कीचड़ में है कीचड़ भी पानी बहुत गंदा है उधर, पर उससे अलिप्त रहता है, लिप्यते न स पापेन, और व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है इस संसार में तथाकथित जो सुख प्राप्त करने के लिए, लिप्त हो जाता है वो, फंस जाता है बुरी तरह से। पर श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं हमको, इनको घर में आमंत्रित करने का मतलब क्या है? इनको जैसे मैंने बताया, घर में आमंत्रित करने का मतलब है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और सबको हम जोर जोर से घोषित कर रहे हैं कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूं, भगवान इस घर के मालिक हैं। और इस घर में अगर वो मालिक हैं तो मालिक जैसे चाहते हैं वैसा ही कार्य होगा इस घर के अंदर, हम सब उनके दास हैं, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही हम रहेंगे, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही हम लोग खान पान रहन सहन बातचीत सब वो जैसे चाहते हैं। अरे ऐसा ही है, भगवान के शरण आने का मतलब ऐसे छत्र छाए नीचे आना, बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, असर पड़ेगा उसका, पर अच्छा पंडाल बना दिया तो फिर सुरक्षित है। ऐसे व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है जब भगवान को अपने घर में निमंत्रित करता है। हमको मालूम है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण हमारे संभालेंगे, तो चिंता नहीं है क्योंकि प्रभु जी ने पंडाल डाला है, हमको चिंता नहीं है, बारिश आएगा तो भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से अनाथ और सनाथ दो प्रकार के लोग हैं, अनाथ और सनाथ। जो अनाथ बालक है ऐसे घूम रहा है जिसके मां बाप नहीं है, हमेशा चिंतित है वो, चिंतित रहता है वो, कल कौन खिलाएगा मेरे को। जैसे ये कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, जिसका बेल्ट है जिसका बेल्ट नहीं है गले में, जिसका गले में बेल्ट नहीं है वो अनाथ है, हमेशा डर डर के घूमता रहता है, हमेशा चिंतित रहता है कहां खाना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन मुझे मार लेगा, कौन पकड़ के ले जाएगा। पर जिसका कोई मालिक है उसको कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसके गले में पट्टी है, ये पट्टी को देख के लोग कहेंगे आ गया कोई इसका मालिक है इसको छोड़ दो। ऐसी हमारी स्थिति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हम जितना भी पंडाल बना ले पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, जब तक भगवान के छत्र छाया में नहीं आएंगे। देखिए कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने बहुत सारे अपने अपने बना के रखे थे सब पंडाल अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं मरूंगा ऐसा नहीं मरूंगा, अगर ये बारिश आएगा तो ये रहूंगा। पर जब परिस्थिति आ गई ऐसे, भौतिक प्रकृति ऐसा है कि जितना भी हम लोग इमरजेंसी का बना के रखते हैं वो भी फेल हो जाता है। और इस तरह से ये आश्रय को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और सरल तरीका, हरे कृष्ण, हम भी नहीं बचेंगे। बहुत बोल रहा है भगवान, बोले तो बहुत बोलता है, अभी तेरे ऊपर भी सुरक्षित नहीं है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भगवान के आश्रय लेने का सुलभ तरीका क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, अभी देखा आपने बहुत सारे तरीके होते हैं, पर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। और वो है कि बस ये हरे कृष्ण, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यता, कि हरिनाम लो और ऐसा एक भवौषधि है जिसके द्वारा इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलिप्त रहो। और मैंने गौर किया है, ये पूरे परिवार जो सुतार प्रभु के परिवार हैं, किस तरीके से उन्होंने बड़े गंभीरता पूर्वक और बड़े सीरियसली इस तत्व को न केवल समझा है बल्कि अपने पूरे परिवार में जहां तक उनका प्रभाव है सबको वो अपने उदाहरण से और अपने वचनों से प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से समझे, तत्व ज्ञान को समझा है और समझने के बाद न केवल उतारा है अपने जीवन में पर दूसरों को भी उतारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले महादेव सुतार प्रभु ने लिया, उनके बाद उनके भाई जो हैं बाबा साहेब उनको बताए, उन्होंने स्वीकार किया, उनके परिवार के लोग लिए और उसके बाद अभी सहदेव प्रभु और उनके द्वारा आप सब लोग जितने लोग यहां आसपास रहते हैं वो लोग ये उदाहरण देख रहे हैं। तो हमारा नम्र निवेदन है, आसपास में आपके जितने पड़ोसी हैं रिश्तेदार हैं, कृपया इस जो बहुत ही सरल तरीका है इसमें कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वही है, सिर्फ उसको समझो कि क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है ताकि उस अलिप्त रहे संसार में। ये तरीका जो है बहुत प्रामाणिक है और बहुत ही सरल है। आप देखेंगे इनके यहां आइए और इनको वो स्फूर्ति मिला है, उन्होंने अभी भगवान को आमंत्रित किए हैं और आप लोग भी कृपया जानिए, देखिए किस तरीके से, कोई अंतर नहीं है, आप भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, बाहरी रूप से वही कार्य चल रहा है पर इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाहरी रूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वही कपड़े है वही सब कुछ है, पर अगर आप मन के अंदर देखोगे, थोड़ा मन की स्थिति देखोगे तो जो व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लिया वो अनाथ है, हमेशा चिंतित है, अकेलापन महसूस होता है, तकलीफ उठाता है, वो सब कुछ रहते हुए भी हमेशा चिंतित रहता है। और जो व्यक्ति ने भगवान के आश्रय लिया है, इस सरल तरीका को स्वीकार किया है, और भगवान को प्रसन्न करने का मतलब क्या, सामने आप खुद बता रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भक्त के रूप में आए और बताए क्या करना है, बोले दोनों हाथ उठाओ और मेरा नाम लो, बस हरे कृष्ण महामंत्र, सिंपल। जैसा एक टीचर आता है, टीचर बच्चे को सिखाता है एबीसीडी कैसा लिखना है, अ आ ई ई, ऐसा नहीं है कि टीचर आ आ ई सीख रहा है अभी, पर बच्चे के स्तर पे आकर उसको सिखाता है कि ऐसे आ आ ई ई लिख लेगा। इसी तरह से साक्षात श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए और हमें सिखाए कि कैसा उनका गुणगान करना है। सिंपल, दो हाथ उठाओ और इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोलो, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने आओ, हाथ उठाओ और इस हरि नाम का जप करो। भवौषधि, यह ऐसा औषधि है जो भव सागर से आपको अलिप्त रखेगा, इस संसार में भी और मृत्यु के बाद परलोक को भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो कृपया आप इसका फायदा लीजिए, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदारी हैं, तो कृपया ये उदाहरण देखिए और आप भी अपने जीवन में इसको उतारिए। और बहुत सरल तरीका है, कोई तकलीफ नहीं है, संग कीजिए और रंगित हो जाइए इसमें, बहुत सरल तरीका। और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग बारिश में बैठे, मैं एकदम फर्स्ट क्लास डबल पंडाल है हमारे यहाँ इधर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए, कृपया सब लोग अभी अभी आरती होगी, अंदर करेंगे और आरती के बाद प्रसाद लीजिए, प्रसाद लेने के बाद जाइएगा। श्री श्री निताय गौर चंद्र की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, धन्यवाद।